अनेक माया के रूप पैदा हो जाते, जितने जितने बाण मारते जाते उतने उतने मायावी रावण तैयार होते जाते। हर साल रावण बनाते हैं, जलाते हैं और हर साल रावण बड़ा चढ़ा होता जाता है। कहां की बात? यहां की बात है। जब तक उसके नाभि कुंड में न मार मारी जाए तब तक रावण मरता नहीं है। कहते ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, तो कहां बाण मारा जाए? और ब्रह्मा रूपी नाभि में बाण मारा जाए कि गीता का भगवान कृष्ण? उस ब्रह्मा नहीं है, गीता का भगवान कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तो नाभि में बाण लगे तो ये ढेर के ढेर रावण बनना बंद हो जाए।
बाबा से मिलना
दो चार आठ दस पंद्रह लोग मिलकर के कुछ नए नए पॉइंट्स निकाले, उसको सेमिनार कह दिया है। जो जैसा होगा वैसा ही तो बनाएगा, वो तो भसम होने वाला होगा तो दूसरे को ज्ञान कैसा सुनाएगा? भसम करने वाला ज्ञान सुनाएगा तो भस्मासुर से भस्मासुरी पैदा होती। ऐसा इसलिए बताया कि कंस के डर से कृष्ण भागते रहते गांवड़े गांवड़े में, और भस्मासुर के डर से शंकर भगवान भागते रहते सारी दुनिया में, और रावण के डर से राम भागते रहते जंगलों में। क्योंकि भगवान आकर के हिंसक युद्ध कराता है या अहिंसक युद्ध कराता है? भगवान भी चाहे तो अपने भक्तों को अपने बच्चों को प्रेरणा दे दे, खूब लड़ाई करो, मारो मार काट मचा दो, लेकिन भगवान ऐसा करेगा क्या? भगवान ना लड़ता है और ना लड़ाई कराता है। अगर युक्ति से काम निकल आए तो मारकाट मचवाने की हिंसा करवाने की क्या दरकार है? जन्म जन्मांतर 63 जन्म तो हम हिंसा करते रहे राजाई लेने के लिए, क्या विश्वगुरु पर राजाई पाई?
नहीं।
कोई धर्म वाले ने पाई? नहीं पाई। तो फिर वही कर्म फिर दोबारा बैठ के करेंगे? अभी तो हमको भगवान पढ़ाते हैं, जो दुनिया के धर्मात्माए होते हैं वो भी नहीं मुख से ये कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा करो खून खराबा करो, तो भगवान आकर के लड़ाई लड़ेगा खून खराबा करेगा? तो युक्ति से काम निकालते हैं। न सांप मरे न लाठी टूटे।
भगवान ने मुझे ने कहा है कि आदि स्वर्ग अर्थात जो आदि में हुआ है वही घटना अंत में होने वाली है। आदि ने ऐसा घटना चक्र चला है कि बाप और बच्चों में कुछ ऐसा घटना चक्र चला कि उनमें अनबन बनी, बाप जो है यज्ञ में चले गए तत्पश्चात माता भी चली, तो अंत में वो सीन कैसे नजर आएगा?
आदि में ब्रह्मा की चली और बप्पा भगा दिया हुआ ना?
हाँ।
अभी ऐसे एडवांस पार्टी में भी होगा क्या? देवियों की चलेगी, राज करेगा खालसा और बाप अपना रास्ता देखेगा, छुपा रुस्तम बाद में खोले, फिर डूबी जा हो जाएगी और एक बाप साबित हो जाएगा सारी दुनिया झूठी और एक बाप सच्चा। बाप को राजा ही चाहिए क्या? बाप खुद आकर के राजा ही लेता है या बच्चों को देता है? नंबर वन पुरुषार्थ
बच्चों
को देता है। बच्चे राजा की शूटिंग करें अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाए और जो आज में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा होता है वो अंत में प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा जरूर रिपीट होना है। क्या हुआ
सोच पड़ गए
थोड़ा और जोर से बोलो घर में भी जोर से बोलते
हैं की बात नहीं सकते नई आत्माएं ज्ञान से आकर्षण तो हो रहा है नई आत्माओं को यज्ञ में आ रही है लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे उनको धारणा के बारे में समझ में आता है जैसे प्यूरिटी है तो बाद में आना बंद कर रहे तो वृद्धि कैसे होगी वृद्धि कैसे होगी?
मैं ज्ञान सुनाने वो मुख्य बात है कि धारणा सुनाना वो मुख्य बात है?
ज्ञान तो सुनाते हैं लेकिन
ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा कि भगवान बाप आया हुआ है। अगर ये बुद्धि में बैठ ज्ञान माने क्या ज्ञान माना जानकारी किसकी जानकारी मुख्य अपनी जानकारी दुनिया की आधिपत्य की जानकारी और परमात्मा बाप की जानकारी तीन बातों की पूरी जानकारी अगर बुद्धि में बैठ जाए नट सेल में तो वो आत्मा जितनी ताकत उसमें होगी उतनी अपने आप ही धारणा करेगी। किसी को पहले पहले ये कहना ही नहीं है कि तुम ये धारण करो। अगर शुरुआत में किसी को धारणा सुना देंगे तो भाग जाएंगे
कोई सुनाते ना थोड़ा।
अभी तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है मोस्टली कमजोर आत्माएं निकलेंगी या पावरफुल आत्माएं निकलेंगी शूटिंग हो रही है। ब्राड ड्रामा की भी शूटिंग होती है तो कलयुग के अंत आते आते कमजोर आत्माएं आती हैं परमधाम से या पावरफुल आत्माएं आती है कमजोर आत्माएं आती तो वहां परमधाम से सृष्टि पर आती है और यहाँ कब्र दाखिल आत्माएं चैतन्यता में ज्ञान की रोशनी में आती है। सीरियल वही जिस क्रम से परमधाम से उतरती है उसी क्रम से ज्ञान में आती जाती है। तो हमें तो मालूम है कि दिन प्रतिदिन कमजोर आत्माएं आती जा रही है तो उन्हें पहले ही हमें धारणा सिखा दे 16 कला संपूर्ण बनना है संपूर्ण पवित्र बनना है। अब वो तो बननी नहीं है। कोई कोई ऐसे होते हैं कि भले कलयुग कांत चल रहा है कलयुग चल रहा है फिर भी बहुत सारी दुनिया में उनका नामाचार हो जाता है। विवेकानंद जैसे पैदा हो जाते महर्षि दयानंद जैसे पैदा हो जाते बिल्कुल उनका चक्कर तो लगाया ही नहीं अभी
ब्रह्मा स्थापना के लिए निमित्त है निमित्त बनता है लेकिन जैसे वो शरीर छोड़ देता है तो ब्रह्मा में प्रवेश करता है और जब ब्रह्मा अंत में महाकाली बनती है विनाश के लिए निमित्त बनते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मा की स्थापना और विनाश के लिए निमित्त बनता है।
जो स्थापना करेगा सो पालना और विनाश नहीं करेगा है? स्थापना अच्छाई की करेगा, जो अच्छी चीज स्थापन हुई उसकी पालना भी करेगा और जो नकामी चीज है उसका विनाश भी करेगा। आत्मा, हर एक आत्मा अपने लिए अच्छे अच्छे दिव्य गुणों की स्थापना करती है, अपनी आत्मा के अंदर शक्तियों की स्थापना करती है, फिर पालना भी करती है, फिर दुर्गुणों का विनाश भी करती है। ब्रह्मा की आत्मा भी ऐसे तीनों कार्य करती है, लेकिन एक ही रूप से नहीं, स्थापना का रूप अलग, पालना का रूप अलग और विनाश का रूप अलग। ऐसे नहीं कि जगदम्बा का काम लक्ष्मी कर देगी या लक्ष्मी का काम जगदम्बा कर देगी।
रामायण ने ऐसा बताया है कि रावण ने जब सीता को चुराया, चुरा के ले गया, उस समय सीता राम की ही थी और जब उसको अशोक वाटिका में रखा वो राम के पास आना चाहती थी, लेकिन संगम पर तो ऐसा दिखाई नहीं देता, संगम पर तो ये ऐसा दिखाई नहीं देता जैसे राम शास्त्रों में है। जब राम की सीता राम ने चुराई थी,
लगता है तुम अंदर घुसे हुए हो सीता जी, सरब जाति तो नहीं हो गए हैं तुम, सब सीताएं हो तो सब सीताओं के अंदर घुस के बैठ गए क्या? शिव बाबा कहते मैं तो अंतर्यामी नहीं हूँ, है शिव बाबा अंतर्यामी नहीं है, आप अंतर्यामी हो गए।
ऐसा विरोधाभास दिखता है शास्त्र, संगम युग पर तो वैसा गायन नहीं है, वैसा
ऐसा गायन नहीं है। संगम युग में कहीं गायन होता है? संगम युग तो असली चीज होती है। और बाबा तो इतने निश्चय पूर्वक बोलते हैं, क्या नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, और बच्चों को, बच्चों को अनिश्चय आ जाता है।
बच्चों को सारा ज्ञान तो दे दिए लेकिन बिंदु क्या भी नहीं,
क्या नहीं दिया? अच्छा तो दिव्य दृष्टि की चाबी और दे दे, अच्छा सत्यानाश कर दो।
एक उड़ीसा के एक ज्ञान का नेम कट हो गया, ज्ञान क्यों नहीं दी बाबा ने पूछा है बच्चों को, वहां से दूसरी वाणी शुरू हो गई।
तो बच्चों को अगर चाबी दे दे साक्षात्कार की तो बच्चे क्या करेंगे? सारा रात चाबी भी यूज करेंगे। बच्चों को दी है असली चाबी, कौन सी चाबी दी है? बुद्धि का ताला खोलने की चाबी दी, बुद्धि का ताला बच्चे खोले, और बाप अपने पास चाबी रखता है, दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता है। तो
अंत में 7 दिन में जो हम के धमाके होंगे उसमें कुछ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, भूकंप आवेगे,
भूकंप तो पहले से भी आने लगेंगे, एक एक शहर पे बम गिरता रहेगा तो भी पहले से बिगड़ता रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा
तो बर्फ तो आदि अखाड़े से शुरू होगी, बर्फ बनना, बर्फ में दबना पड़ेगा,
तो तभी होगा जबकि बैठे हुए धमाके पूर्ण जोर से हो जाएंगे तो सारा समंदर आप बन करके ऊपर उड़ना शुरू होगा, चारों तरफ बरसात ही बरसात और मूसलाधार बरसात, तो पृथ्वी का सारी पृथ्वी का वायुमंडल कैसा हो जाएगा?
ठंडा
हो जाएगा, बर्फ ही बर्फ जाम हो जाएगी। कब होगा?
नौ लाख 16,000
रह जाए संख्या पूरी हो जाएगी उससे क्या होगा?
गर्भ में जमने के बाद ही बच्चों का जन्म होगा।
9,16,000 जो है वो 9,16,108 आत्माएं तैयार हो जाएंगी। ऐसे थोड़े ही है कि वो पहले डिनेस्टी जो पहले जन्म की है वो डिनेस्टी तैयार हो जाएगी। पहले जन्म की जो डिनेस्टी है वो 100-150 वर्ष पूरे होंगे जब राधा कृष्ण के, तब पूरी होगी या उनके जन्म होते ही पूरी हो जाएगी 18-20 साल में। आधे बचेंगे पुण्यात्मा और आधे पाप आत्मा बचेंगे। जाड़ में भी राइटियस और लेफ्टिस्ट दिखाई है। जो राइटियस है वो राइट बात को मानने वाले, जो लेफ्टिस्ट है वो राइट बात को मानने वाले नहीं है। तो सबकी एक साथ कंचन काया बन जाएगी क्या?
राम बाप की प्रतिष्ठा होती है, सुबह द्वापर के अंत में कृष्ण की प्रतिष्ठा होती है। कलयुग के अंत में क्या होगा? कलयुग के अंत में किसकी प्रतिष्ठा?
कलयुग की धारा अवतार की प्रतिष्ठा होती
है। कलयुग की धारा अवतार
नहीं तो गीता पाठशाला हो, गीता पाठशाला क्यों छोड़नी पड़ेगी? मधुबन वालों को मधुबन क्यों छोड़ना पड़ेगा? कुछ तो होना चाहिए। भगवान होते हैं भक्ति मार्ग में, तो जो मन में आया सब कहते रहते हैं। 33 करोड़ देवताओं का गायन है। देवता ही स्वभाव होता है, सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग अंत तक देव स्वभाव की आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती रहती है और असुरों के संग में आते आते देवता से असुर बनती रहती
है। जो रेखाएं है उसके शास्त्र बनाते हैं, उसका आधार क्या है शास्त्र
बोले? अपने किए हुए कर्म ये रेखाएं बदल भी सकती है। हर 5 साल में हस्त की रेखाएं बदल भी जाती है। क्यों बदल जाती है? जैसे जैसे कर्म हम करते जाते हैं वैसे वैसे रेखाएं, चेहरे की रेखाएं, हाथ की रेखाएं बदलती जाती है।
एक मुर्गे ने बोला है हाथ बदल, एक मुर्गे ने बोला है पिता के ऊपर ब्रह्मा जी छाप पड़े, एक
ब्रह्मा जी छाप गीता के दिल पर ब्रह्मा की छाप,
यज्ञ की आदि में, यज्ञ की आदि में ही गीता माता के ऊपर ब्रह्मा की छाप पड़ी,
झूठी गीता के ऊपर।
उस समय ब्रह्मा बाबा छोड़ लौकी छठी बहन की रही
कौन?
गीता माता।
ये कैसे पक्का कह दिया है? ये बात कैसे पक्की कर दी?
गीता माता
की गीता माता ही उनकी सगी बहन थी।
गीता माता
दूसरी माता उनकी दूसरी माता नहीं थी। नहीं उन्हें बातों में विश्वास कर लिया ना?
नहीं बाबा। ब्रह्मा बाबा ने कई साक्षात जाकर गीता माता को सुनाया ऐसा वो गीता माता ही उतने
ऐसे समझिए माने साक्षात्कार सुनाने से बहन हो जाती है।
नहीं वैसे की वार्तालाप के साथ ये हो रहा है
क्या
कि गीता माता बहन नहीं हो सकती?
जिसको साक्षात्कार सुनाए जाए वो बहन हो जाती है।
अभी तक तो वही भाई समझते थे,
अभी तो ऐसे ही हो गया कि आपने समझ लिया ऐसे।
अच्छा राधा बच्ची की
है यार, घर जाने की चिंता नहीं है।
बाबा
पृथ्वीराज चौहान और उनका मित्र चांद अंत में शरीर छोड़ दिशा में
क्या
उनका मित्र चांद वो शरीर छोड़ दिशा में अंत में एक दूसरे को मार देते है चाकू तो उसकी यहाँ कोई शूटिंग होती
है क्या करते
मार देते दम करते शरीर छोड़ते समय उसकी यहाँ कोई शूटिंग होती है
दोनों एक अच्छे बाप और बेटा दोनों एक अच्छे जन्म लेते हैं या आगे पीछे लेते हैं बाप की जयंती सो बच्चे की जयंती तो जन्म साथ साथ लेंगे तो दे अभिमान नहीं छोड़ेंगे साथ साथ जन्म लेना क्या है और मृत्यु होना क्या है दे अभिमान में जिंदा होना और दे अभिमान से मर जाना तो दोनों साथ साथ मरेंगे कि आगे पीछे मरेंगे साथ साथ मरते जब ब्रह्मा आया था तो बाप का पार्ट रहा था या गुप्त हो गया था तो ब्रह्मा से विष्णु आएगा तो बाप का पार्ट रहेगा या गुप्त रहेगा एक होता है बाप गुप्त हो जाना एक होता है बाप का पार्ट गुप्त हो जाना पहली मूर्ति रही तो दूसरी मूर्ति और तीसरी मूर्ति संसार में रही या नहीं रही
रही
लेकिन कहाँ रही ये पता नहीं दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तो पहली मूर्ति के स्थान पर दूसरी मूर्ति ने स्थान ले लिया ब्रह्मा से विष्णु तो मूर्तियां तो तीनों ही संसार में रहती है एक साथ पाठ नहीं बजाती
रास्ते चलते चलते
दुनिया का जो रास्ता है जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता छूट गया और शिव बाबा ने अपने धंधे में फंसा लिया चल
परिवार की सेवा हो। सेवा तो सेवा है, प्यार से सेवा होनी चाहिए।
मनसा सेवा है तो भी सेवा है, कर्मेंद्रियों से सेवा है तो भी सेवा है, वाचा से सेवा है तो भी सेवा है।
पापा
जो भी सेवा करे वो लगन से करे, लगाव पूर्वक, प्यार पूर्वक। तो सेवा में ईश्वरीय प्यार झलक रहा हो। स्वार्थ का नाम निशान न हो।
क्षेत्र में जैसे राम वाली सोन का अमृत शुरू हो गया
है,
राम वाली जो सोन थी उसका अमृत तो शुरू हो गया, मतलब वो निश्चय निश्चय के चक्र में नहीं आती थी। वैसे ही 88 में कृष्ण वाली सोन का भी तो अमृत शुरू हो गया।
88 में
कृष्ण वाली सोन का अमृत तो शुरू हो जाना चाहिए ना।
आप 88 कह रहे हैं ना, 88 में स्वतंत्र हो गई, देह के भांत से कुछ परे हो गई, तभी तो मृत्युलोक खलास हुआ उसका। मृत्युलोक खलास हुआ और अमरलोक
शुरू हुआ।
लेकिन बाबा वो तो अभी भी निश्चय निश्चय के चक्र में आती है, 88 के बाद भी निश्चय निश्चय के चक्र में आती है।
लेकिन वो ज्ञान गर्भ में प्रवेश हुई या उसका जन्म हुआ, तो ज्ञान गर्भ में प्रवेशता हुई, जन्म नहीं हुआ। प्रवेश होना अलग बात और जन्म होना अलग बात।
और
बाबा जगन्नाथ का जो लकड़ी का यादगार दिखाते हैं तो लकड़ी का क्यों दिखाते यादगार?
वो लकड़ बुद्धि होगा पहले। एकदम काली लकड़ी होती है क्या? वो लकड़ी कैसी होती है? एकदम काली लकड़ी होती है और वो लकड़ी 12 साल तक जल में रहनी चाहिए, नदी में रहती है। ज्ञान जल में रहने से परिपक्व स्टेज में पहुंच जाती है।
तो शूटिंग पीरियड में 2006 से 2018 तक तो 12 वर्ष काउंट कर सकते हैं,
जरूर होगा। 2006 से
2008
हो सकता है, बड़ी बात थोड़े ही है। नदी तो चाहिए ना, ऊंची स्टेज में बहने वाली नदी चाहिए या नीचे स्टेज में बहने वाली नदी चाहिए? ऊंची स्टेज में बहने वाली नदी चाहिए।
बोला मैं हर कर्म का संगम में आता हूँ, फिर बोला मैं जीवे जीवे नहीं आता हूँ, फिर बोला कर्म का संगम में नहीं आता हूँ। कर्म का अर्थ क्या है?
मैं कल्प 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 के संगम में आता हूँ। तो 3 बार कल्प रिपीट किया है। जब देवतावर्ण की शूटिंग होती है 76 तक, तो देवतावर्ण की शूटिंग में 4 अवस्थाएं होती है, तत्व प्रधान, तत्व सामान्य, रजो और तमो, ये 4 युग हो गए। एक कल्प हो गया। ऐसे ही त्रेता युगी क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं की शूटिंग, उसमें भी 4 अवस्थाएं, चार युग हो गए, एक कल्प हो गया। ऐसे ही द्वापर युगी वैश्य बने की आत्माओं की शूटिंग कहते हैं। ब्रह्मा ने तीन बार सृष्टि रची और तीनों बार बिगाड़ दी। तीन बार जो कल्प बोला है वो शूटिंग पीरियड के लिए बोला है।
माँ श्री का चित्र में जो दिखाया है विदेशी को का श्री में जो लास्ट श्री होते बेटा का शूटिंग के अंत में वो लोग स्वर्ग में आते हैं, तो यहाँ का मतलब क्या है?
श्री के अंत में लास्ट त्रेता के
त्रेता का जो अंत होता है जो विनाश होते हैं अर्थो विनाश हो जाते हैं तो उसका राज्य मिलते हैं विदेशी में, तो इसका यहाँ के में क्या कैसे ये रिहर्सल होता है, मतलब क्या?
जो सीढ़ी के चित्र में ऊपर है चार भाई दिखाए गए हैं।
वे एक है देवी देवता सनातन धर्म का प्लीज, और बाकी तीन है विदेशी धर्मों के बीज हैं, इस्लामी बौद्धी और क्रिश्चियन। इन धर्मों के जो बीज हैं वो संक्षेत्र से ही प्रत्यक्ष होते हैं, तो सबसे पावरफुल आत्माएं हुई या कम पावर वाली आत्माएं हैं? पावरफुल है लेकिन विदेशी धर्मों के बीज हैं, इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव कार्य करते हैं या कंस्ट्रक्टिव कार्य करते हैं? डिस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं। संगम युग में भगवान का जो बना बनाया मंदिर है, जो घर गृहस्थ है उसको तोड़ते हैं, इसलिए यादगार बन गया गिरजाघर। ये भगवान के बने बनाए घर संकल्प चलाए होंगे संगम युग में, तो उसकी यादगार भक्ति मार्ग में बनी हुई है। वो तीनों सम्मिलित रूप से जो डिस्ट्रक्शन करते हैं एडवांस पार्टी में, तो डिस्ट्रक्शन का काम भी चाहिए या नहीं चाहिए? है? चाहिए, नहीं तो इतने ढेर सारे स्वर्ग में थोड़े चले जाएंगे। जो नई दुनिया बनेगी उसमें थोड़े जाएंगे या ढेर के ढेर जावेंगे? थोड़े जावेंगे। तो थोड़ी संख्या कैसे हो इसके लिए वो निमित्त बने हुए, ऐसे ऐसे बम्ब छोड़ेंगे। वो तथाकथित ब्राह्मणों ने तो बहुत छोटे छोटे बम्ब छोड़े, वो ऐसे ऐसे बम्ब छोड़ेंगे जो नाक में सूंघने मात्र से ही मौत हो जाएगी, सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उनका पार्ट है नष्ट देव का, पार्ट तो उन्होंने बजाया, कुछ न कुछ सेवा तो की है, उस पार्ट का रिजल्ट क्या निकलता है कि जो छोटा सा देवताओं का परिवार वो प्रत्यक्ष हो जाता है और बाकी सब का पराभव हो जाता है, हार हो जाती है। तो प्रत्यक्ष तो किया ना, तो उसका रिटर्न उनको नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उनको लास्ट में सत्युग के त्रेता के अंत के जो तीन जन्म है वो डिस्ट्रक्टिव तीन जन्म में उनको राजा ही मिल जाती है।
कृष्ण के साथ जो अष्ट सुखी दिखाया, कृष्ण के साथ जो अष्ट सुखी दिखाया नाश्ता हुआ, तो किसका पार्ट है? अष्टदेव का है ना,
अष्ट सुखी,
अष्ट सुखी दिखाया ना कृष्ण के साथ,
सखी
सखी
सखी मूर्ति चित्र है, एक साइड में नरक दिखाया, एक साइड में स्वर्ग दिखाया, वो जो दिखाया वो जो आठ आत्मा को
रखा कृष्ण को तो आठ पांच रानियां थे ना कृष्ण का पांच रानियां था
तो आठ पटरानियों की बात कर रही है माता जी
पटरानी है
साथ पटराना नहीं होंगे पटरानियां ही होंगी कि पटराना भी होंगे अकेले की बात क्यों कर रहे
हैं शूटिंग पीरियड 60-61 से शुरू होकर 31-12 गाड़ीवान 2004 में खत्म हो जाती है शूटिंग पीरियड 61 में से सुना 60-61 से शुरू होकर 31-12-2004 में शूटिंग पीरियड एक्चुअल शूटिंग पीरियड देखते हैं शेष खत्म हो जाता है अभी तो अंतिम चरण चल रहा है 2007 में तो बाकी
61 से लेकर के शूटिंग पीरियड
61 में चालू होती है 21-12-2004 में खत्म हो जाती है
2004 में खत्म हाँ जी
तो बाकी 1936 से 59 तक वो पीरियड और 2004 के बाद 2036 तक ये बाकी के पीरियड ड्रॉ डाउन में कैसे आएगा
कहाँ तक
1936 से 1959 और 2005 से 2005 से 2036
59 के आगे संक्षेपण तक नहीं बढ़ाएंगे
तो आ जाता है
शूटिंग कैसे आ जाता है जो गोले का चित्र है शशि चक्र का चित्र है उसमें कृष्ण को राधा को दिखाया गया है इधर कौन है अधिष्ठाता सत्युग के चित्र में किसको चित्रित किया गया है सत्युग की शूटिंग में राधा कृष्ण को राधा कृष्ण की आत्मा कौन है
ब्रह्मा
सरस्वती तो ब्रह्मा सरस्वती ने 61 तक ही काम किया संक्षेपण तक काम नहीं किया निमित्त बन करके उनका कार्य चला ना 76 तक इसलिए 40 साल का है 61 तक नहीं है 61 तक इसलिए लिया गया कि 60 से पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की कोई खास सेवा नहीं हो पाई चित्र ही तैयार नहीं हुए थे जब चित्र तैयार हुए हैं तो बड़ी तेजी से सेवा होना शुरू हुई और फिर जनसंख्या की वृद्धि हुई सत्युग का जब आदि होता है तो जनसंख्या की वृद्धि होती है और सत्युग के अंत में 2 करोड़ जनसंख्या हो जाती है तो 76 तक 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिला 61 से पहले कोई खास सेवा के प्रोग्राम नहीं होते ना उस समय प्रोजेक्टर शो निकला ना उस समय कोई खास लिटरेचर निकला ना चित्र निकले ना प्रदर्शनी निकली न मेले हुए न राजयोग शिविर हुआ न कॉन्फ्रेंसेस हुई न कोई सेमिनार हुई न मेगा प्रोग्राम हुए जनसंख्या की वृद्धि कैसे हुई जब से जनसंख्या की वृद्धि हुई तब से कहेंगे
आदि का समय
सत्युग का आदि
आदि का 36 से 59 तक 1959 तक वो पीरियड ड्रॉ डाउन में कैसे आएगा
वो संगम में संगम
बाबा आदमी आदमी जब शरीर छोड़ता है आदमी जब शरीर छोड़ता है आदमी जब शरीर छोड़ता है
क्या सोचता है
शरीर छोड़ता
है
शरीर छोड़ता है
शरीर छोड़ता है तो राम राम सत्य
राम राम सत्य राम राम सत्य
राम राम सत्य
क्यों बोलता है क्योंकि भक्ति मार्ग में जो कुछ होता है वो कहाँ की यादगार संगम युग की यादगार संगम युग में भी जब मनुष्य सृष्टि शरीर छोड़ती है मानवीय सृष्टि अपना शरीर छोड़ती है तो अंत समय में लोग किसको याद करते हैं राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है संसार में इसलिए भक्ति मार्ग में उसकी यादगार चली आ रही है फिर जब जब कोई मरेगा तो मरने के बाद राम नाम सत्य है कहेंगे।
और
बाबा सत्य जो संगम युग की यादगारी
बोलो 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 काना से सुन रहे हैं।
माँ बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम का जो विशेषता है वो तो संगम युग की बात है ना, जो वहाँ से उत्तर मिलता है इसलिए उत्तर प्रदेश नाम रखा पड़ता है। उत्तर प्रदेश जब नाम पड़ता है उत्तर तो वहाँ से ही मिलता है ना, कोई पुत्र तो होता है
जी। हाँ जी,
तो उत्तर प्रदेश नाम लिखा तो ये संगम युग की शूटिंग की बात है।
हाँ जी,
मैं वही बोल रहे हैं जो उत्तर प्रदेश जहाँ से उत्तर मिलता है सब कुछ
अच्छी बात है, यहाँ से सब बातों का उत्तर मिल जाए तो नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। इसलिए अद्वैतवाणी में बोला है उत्तर प्रदेश को युक्ति को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, तो धर्म युद्ध का खेल अधर्मी दिखाएगा या धर्मी दिखाएगा? धर्म को ही सत्य कहा जाता है, अधर्म को झूठ कहा जाता है। इसलिए भगवान के जो भी रूप है, जो भी भगवान के अवतार हैं, वो कौन से प्रदेश में दिखाए जाते? उत्तर प्रदेश में दिखाए जाते। चाहे राम का अवतार हो, चाहे कृष्ण का अवतार हो, चाहे शिव का मंदिर हो, कौन सी नगरी है? काशी नगरी।
और
बाबा त्रिमूर्ति मतलब जो हर धर्म में त्रिमूर्ति निकलेगा तो जैसे धर्म पिता धर्मदार अष्टदेव भगवान की त्रिमूर्ति में
है,
जैसे में बोला है जो हर धर्म में त्रिमूर्ति निकलेगा तो आधार रूप भी चावल की अष्टदेव होगा त्रिमूर्ति
है।
एक कैसेट में सुना है जो हर धर्म में त्रिमूर्ति निकलेगा तो कौन कौन धर्म होगा?
हर धर्म का शिव बाबा निकलेगा कि नहीं?
हर धर्म का प्रजापिता निकलेगा।
प्रजापिता कहो शिव बाबा कहो बात तो एक ही हो गई।
शिव बाबा कैसे होगा?
वही निराकारी आत्मा आती है ऊपर से, कोई सूक्ष्म आत्मा ऊपर से आती है, सूक्ष्म पिता कोई ऊपर से आता है धर्म का, तो वो उन धर्मों का शिव बाबा हो गया।
लेकिन
अब वो आता है तो कोई में मुकर्र रूप से प्रवेश करता है तो वो उस धर्म की माता हो गई। फिर कोई पिता भी होगा साकार में, ऐसे ही उसको जिससे जन्म मिलता है वो उसका बाबा हो गया। बीज रूप सूक्ष्म बीज रूप स्थूल और उस बीज से निकला हुआ पहला बीज उस धर्म का दो और एक आधार मूल जिसमें ऊपर वाला प्रवेश करता है, तो चार आत्मा हो गई ना। ऊपर वाला जिसमें प्रवेश करता है दो और जिसमें प्रवेश किया वो किसका बच्चा बना?
बीज
का। और उस बीज का बाप कौन?
बीज का
और क्या वो सब धर्मों का विनाश करता है कि नहीं
करता
है? पांच प्रकृति के तत्व तो दासी कैसे बनेंगे?
अभी जल बाढ़ में आता है तो परेशान परेशान कर देता है, बोड़म बोड़ कर देता है, हत्याएं कर देता है या नहीं? तो तामसी प्रकृति है जलरू। ऐसे ही सतयुग में नदियां बाढ़ लाएंगी क्या? समंदर उछाल मारेगा क्या? नहीं। इसलिए जल जो है वो जल देवता सात्विक बन गया, सुखदायी बन गया। ऐसे ही और तत्वों का ऐसा
युग में कुछ कार्य नहीं होगा, संगम युग में ऐसे राशि का कुछ कार्य नहीं होगा,
क्या नहीं होगा?
संगम युग में वो प्रकृति चैतन्य प्रकृति दासी के रूप में क्या काम करता?
संगम युग में प्रकृति को अंत तक तामसी रूप धारण करना है, लेकिन दुनिया वालों के लिए, बाप के बच्चों के लिए नहीं। बाप के जो असली बच्चे होंगे उनके ऊपर प्रकृति के प्रकोप का कोई असर नहीं होगा। बहुमंजली इमारत सारी गिर जाएगी, बाप का बच्चा बच जाएगा। प्रकृति तामसी होने के बावजूद भी बाप के बच्चों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी।
माउंट आबू में सेफ्टी हो जाएगी
है?
माउंट आबू में जाने के बाद सेफ्टी हो जाएगा ना? गाड़ी से
माउंट आबू तब तक है जब तक लास्ट विनाश नहीं होता है। लास्ट विनाश में सब कुछ खलास हो जाता है। पृथ्वी का जो भी अणु जहाँ से शुरू हुआ है चक्कर लगाना, वो वहाँ का वहीं पहुँचेगा।
माउंट आबू जो पत्थर है वो क्या दूसरा तरफ दुनिया की दूसरा तरफ पत्थर है, वो मजबूत है क्या?
काला पत्थर जो होता है ग्रेनाइट पत्थर, वो सबसे मजबूत पत्थर माना जाता है।
तो बिना के टाइम में हिलेगा नहीं?
पत्थर की बात नहीं है, पहाड़ की बात है।
क्या देख रहे
हैं? पहाड़ एक ही ऐसे पत्थर से बना हुआ है और इतना गहरा है कि सारी दुनिया के ऊपर भूकंप के झटके आते रहेंगे छोटे बड़े। माउंट आबू के ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन लास्ट जो विनाश होगा एक साथ सारे ही एटम बम फटेंगे, तो ग्रेनाइट का पहाड़ भी लावा बन जाएगा।
हम लोग आ रहे हैं।
अच्छा, तो हमेशा परमधाम में ही रहने की सोचते हो क्या? सुखधाम में नहीं जाना चाहते?
साढ़े चार लाख का बॉडी कहाँ रहेगा?
है
साढ़े चार लाख आत्मा का जो शरीर है बॉडी?
हाँ, वो साढ़े, आप ये समझते हैं कि साढ़े चार लाख जो है वो शांति धाम में ही बैठे रहेंगे, सुखधाम में नहीं जाएंगे?
माता बेटा
नहीं आएंगे,
लेकिन आप बुद्धि नहीं जा रही।
सिद्धांत दिल्ली में बनेगा विनाश के बाद, तो विनाश से पहले,
विनाश के बाद दिल्ली में बनेगा सुखधाम।
सुखधाम से विनाश से पहले बनेंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जब लास्ट में अंतिम विनाश होगा तो माउंट आबू का वो भी विनाश हो जाएगा, वो जो पत्थर है
आगे,
तो हम लोग कहाँ रहे? हमारा
सुखधाम नहीं तैयार होगा। राधा कृष्ण का जन्म ही भूल गया,
इधर में शुरू हो जाएगा, इधर में शुरू हो
जाएगा। कौन बोल रहा था? सब कैमरा के सामने रिकॉर्डिंग कर,
धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा।
तीन लोग के चित्र है आपने, शंकर को ऊपर क्यों बैठा दिया? शिव शंकर को मिला के क्यों कर दिया? शंकर का नाम शिव के साथ, शिव के साथ शंकर का नाम ही क्यों जोड़ा गया? ये दो प्रश्न जरूर डालना चाहिए हर पर्चे। शिव शंकर को दोनों को मिला के भक्ति मार्ग में इकट्ठा क्यों कर दिया गया? दूसरा प्रश्न, 33 करोड़ देवताओं के बीच में एक शंकर का ही नाम शिव के साथ क्यों जोड़ा गया? शंकर की मूर्तियां, नग्न शंकर की मूर्तियां,
नग्न शंकर की मूर्तियां
संसार में
संसार में
सबसे जास्ती तादाद में क्यों पाई जाती है? अरे और किसी देवता की इतनी मूर्तियाँ नहीं मिलती हैं जिसमें शंकर की मूर्तियाँ मिलती हैं।
और कुछ
तीन लोगों के चित्र में शंकर को सबसे ऊपर क्यों दिखाए गए?
शंकर को
बीकेएस के पुराने झाड़ के चित्र के ऊपर परमधाम में जाती हुई आत्माओं के साथ शिव और शंकर दोनों को क्यों दिखाया गया? शिव को भक्ति मार्ग में शिव को शंकर को तीसरा नेत्र क्यों दिखाते थे? हाँ, उसे उस नेत्र को शिव नेत्र क्यों कहा जाता है? बीकेएस में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा किसका टाइटल है और वह अर्ध चंद्रमा शंकर के मस्तक पर क्यों दिखाया जाता है?
शिव शंकर को
मिलाकर एक इसलिए कर दिया गया है कि
शिव
की याद में एकमात्र देवता महादेव शंकर ही शिव की याद में पहले पहले लवलीन हो जाता है, इसलिए बाप समान बन जाता है। और किसी देवता को शिव के साथ नहीं मिलाया जाता। शिव ब्रह्मा या शिव विष्णु कभी नहीं कहेंगे, सदैव कहेंगे शिव शंकर बोलना। भक्त लोग शिव शंकर को एक ही मानते हैं, फिर शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में क्यों देते हैं? शंकर शिव कभी नहीं कहेंगे, क्यों? शंकर का नाम शिव के साथ इसीलिए जोड़ा जाता है कि पुरुषार्थ करके रुद्रमाला का पहला मणका, पहला साकार मणका, साकारी आकारी मणका बनता है। इसलिए जो उठे स्वर्ग अर्थात पहला नंबर।
नग्न शंकर की मूर्तियाँ संसार में सबसे जास्ती तादाद में क्यों पाई जाती है?
मूर्ति अथवा चित्र प्रैक्टिकल चरित्र की यादगार है और शिव ने जो प्रैक्टिकल चरित्र संसार में सबसे जास्ती बजाया है वो शंकर के चित्र के द्वारा ही बजाया है। हाँ, शिव का पाठ शंकर के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होता है। ये प्रश्न क्या था? ये कौन से नंबर का प्रश्न था?
ये नंबर तीन का।
क्या था प्रश्न?
नग्न शंकर की मूर्तियाँ संसार में सबसे जास्ती तादाद में क्यों पाई जाती
है? क्योंकि सबसे जास्ती पाठ बजाया है शिव ने, सबसे जास्ती पाठ बजाया है, सबसे जास्ती सेवा की है, इसलिए सबसे जास्ती तादाद में शंकर की मूर्तियाँ मिलती है। इसलिए शंकर की मूर्तियाँ सबसे जास्ती तादाद में मिलती है। शंकर की आत्मा तो सिर्फ याद में रहती है, याद के लिए शरीर की कर्मेंद्रियों की जरूरत ही नहीं। शिव की याद तो मन बुद्धि का काम है, जो शंकर की मन बुद्धि रूपी आत्मा ही करती है। बाकी कर्मेंद्रियों से सारा कार्य शिव बाप करते हैं। जो सबसे ऊंचा कार्य करता है, सबसे पावरफुल कार्य करता है, सबसे पावरफुल होता है, वो ऊंची गति पर बैठता है। इसलिए ब्रह्मादेव ब्रह्मापुरी
में,
विष्णुदेव विष्णुपुरी में और शंकर महादेव सबसे ऊंची पुरी में दिखाया जाता है। याद की स्टेज की ऊंचाई दिखाई गई है, याद की स्टेज में हाईएस्ट पोजीशन दिखाई गई है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के श्रेष्ठ रूपी झाड़ में हीरो पाठधारी के रूप में जगत पिता शंकर का नाम सर्वोपरि है, इसलिए झाड़ में शंकर को सबसे ऊपर दिखाया गया। क्योंकि विनाश काल में सृष्टि का विनाश होने पर मनुष्य आत्माओं की बारात में परमधाम रूपी घर जाने वाली बारात में शिव शंकर झूलेलाल ही सबसे आगे आगे होंगे।
शिव शंकर
झूलेलाल आगे होता है ना बारात में,
झूलेलाल ही
सबसे आगे आगे होंगे,
सबसे आगे आगे होंगे।
क्या लिखा?
सबसे ऊपर हेडलाइन के रूप में लिखना है।
हेडलाइन ऊपर क्या लिखा?
अच्छा, भक्ति मार्ग के चित्र देवताओं के चरित्र की यादगार,
देवताओं के प्रैक्टिकल चरित्र की यादगार।
भक्ति मार्ग में शंकर को तीसरा नेत्र क्यों दिखाते हैं?
ब्रह्मा या विष्णु को क्यों नहीं दिखाते भक्ति मार्ग में? शंकर की भ्रकुटि में तीसरा नेत्र इसीलिए दिखाते हैं कि ज्ञान स्वरूप शिव शंकर की भ्रकुटि रूपी तख्त पर मुकर रूप से विराजमान रहते हैं, इसलिए शंकर को भक्ति मार्ग में अविनाशी देवता अमरनाथ माना जाता है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मुरली में भी इसीलिए बोला है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, ब्रह्मा का तो शरीर छूट जाता है, इसलिए मुरली और शास्त्रों में बोला है ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में ख़लास होती है, और बोला है कि यह ब्रह्मा मेरा टेम्परेरी जगत, इसलिए ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है।
ज्ञान सागर
शिव का
तीसरा नेत्र
न ब्रह्मा को दिखाते हैं न विष्णु को दिखाते हैं, क्योंकि शिव की बोली हुई बोलियों का हुई अर्थ न ब्रह्मा की बुद्धि में बैठता है न विष्णु की बुद्धि में बैठता है। यह तीसरा नेत्र 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच पहले रुद्र कहे जाने वाले शंकर के द्वारा ही आदि मध्य और अंत में प्रत्यक्ष होता है, अर्थात रुद्र ज्ञान यज्ञ का आरंभ भी प्रजापिता कहो अथवा जगत पिता कहो के द्वारा होता है। ज्ञान का विस्तार अर्थात व्याख्या भी मध्य में शंकर द्वारा होती है, और अंत में ज्ञान का सार स्वरूप ज्योतिबिंदु रूप भी सबसे पहले शंकर ही बनता है, जो निराकार शिवलिंग के रूप में आज भी पूजा जाता है। उस शिवलिंग के बीच में शिव ज्योतिबिंदु हीरा के रूप में सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया। शंकर के मस्तक पर अधूरा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा इसलिए दिखाया जाता है कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल
दादा लेखराज
शंकर में प्रवेश करके 16 कला संपूर्ण नारायण बनने की पढ़ाई पड़ती है बुद्धि रूपी पेट में पूरी करती है, और पढ़ाई पूरी होने पर साकार कृष्ण के रूप में जगतम पितरम कहे जाने वाले शंकर पार्वती के द्वारा सृष्टि के पहले पति के रूप में जन्म लेती है। तो भक्ति मार्ग में शंकर के सिर पर 8 मणकों की माला क्यों दिखाई जाती है? मालाओं में जो सर्वोपरि माला है वो अष्ट देवों पर जिनकी यादगार 8 मणकों की माला शंकर के रथ में पाठ बजाने वाले शिव के शरीर रूपी ग्रह में सबसे ऊपर दिखाई जाती है।